Komşu. Aşkım o bile çakana falan. Maçta bir daha da bende. Suriye क्या करता है? विश्व को क्या देता है? रोशनी. और?
सड़क की जगह साफ करता है.
विनाशी प्राप्ति है. की अनुभूति. तुम सब कौन हो? तपस्वी स्वरूप आत्मा है. शांति की कितने फैलाओ, अनुभूति कराओ, जमा का खाता बढ़ाओ. मास्टर विधाता बनो. विधाता अर्थात संडे मूर्ति थी ना, कौन किसको देख रहा है? दूसरी मुरली. बाप कौन है? वरदाता. और विधाता अपने महादानी और वरदानी बच्चों को देख रहे हैं. विधाता अर्थात लॉ मेकर, विधि विधान रचने वाला जो है उसे विधाता कहा जाता है. दूसरा शब्द है भाग्य विधाता, सिस्टर ऑफ फॉर्च्यून, जो भाग्य बांटता है या भाग्य बनाता है, वो दूसरा शब्द है. दोनों ही शब्द भगवान के लिए प्रयुक्त होते हैं. तो मास्टर विधाता बनो. मास्टर विधाता कौन बन सकते हैं? जिनके पास जमा है. जैसे सूर्य के पास देने के लिए कुछ है, रोशनी, विनाशी प्राप्ति है, वैसे तुम भी सूर्य हो. तपस्वी स्वरूप जो आत्मा है वो मास्टर ज्ञान सूर्य की समान है. और क्या कहा बाबा ने आज?
पूरी दुनिया से मोहम्मद का हटाना.
मोहजीत
बाबा ने आज कई बार कहा दुनिया बदल रही है.
दुनिया बदल रही है,
तुम बदल रहे हो.
टाइम केवल इस ज्ञान के सिवा, और जो भी टाइम है वो सब वेस्ट. इस ज्ञान को जो टाइम हम दे रहे हैं बस वही टाइम सफल है. ज्ञान और योग से ही पावन बनेंगे. दुख में संसार की आत्माएं दुख में टाइम वेस्ट कर रही है. क्या ब्राह्मण दुखों से मुक्त है? ब्राह्मणों के दुखों के क्या कारण है? संसार में दुख तो इतना अथाह है. संसार में दुखों की कमी नहीं है. कोई भी व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, अतृप्त है. जो वासनाएं हैं उनका स्वभाव ही अतृप्ति है. एक इच्छा पूर्ण होती है, दूसरी जागती है. वो पूर्ण होने के बाद भी अतृप्त ही रहता है व्यक्ति. उनका स्वभाव ही ऐसा है. इच्छा है, एक इच्छा दूसरी इच्छा, अभिप्सा है, इच्छा है, कामना है, वासना है. सबसे मुख्य काम वासना. कितना भी व्यक्ति भोगता है पर कभी संतुष्ट नहीं हो पाता. अतृप्त रहता है चित्त. अल्पकाल का ही सुख प्राप्त होता है उसको बस. इसलिए बाबा कह रहे हैं संसार में दुख भोगने में ही समय व्यतीत हो रहा है. सारे संसार का ऊपर से जो दिख रहे हैं, जो व्यक्ति अपने वासना को प्रेम की संज्ञा देता है उन्हें अपना व्याकरण बदलना पड़ेगा. वो है कामना, वो है वासना, परंतु वो उसे क्या कहता है? प्रेम कहता है. प्रेम का देह से कोई लेना देना नहीं है. प्रेम की परिभाषा में प्रेम अर्थात जिसका देह से कोई लेना देना नहीं है. संसार में जिसे प्रेम कहा जाता है वो देह के इर्द गिर्द है. वो देह के सौंदर्य पर निर्भर है, देह का वास्तविक स्वरूप नहीं है वो। इसके लिए सारा संसार भ्रमित है। जितनी फिल्में, जितने उपन्यास, जितने गीत, कविता है, नज्म, गजले, ये सब उसी के आधार इर्द गिर्द घूमते हैं। इसके लिए बाबा कह रहे हैं कि संसार में दुख भोगने में टाइम वेस्ट होता है। मैं प्रश्न पूछ रहा था, क्या ब्राह्मणों को भी कोई दुख है? संसार तो दुखी है। हम कहते हैं कि हम जैसा कोई नहीं, हम पद्मा पदम भाग्यशाली है, हमसे अधिक संसार में और कोई नहीं। जैसे हम हैं, हमें भगवान मिल गया, सब कुछ प्राप्त हुआ, परंतु फिर भी दुख तो है, बहुत सारे दुख है, छिपे हुए हैं, दबे हुए हैं। जब तक आत्मा ज्ञान और योग में पुरुषार्थ नहीं करती, आज बोला ना रियल नशा किसको है? जो याद के पुरुषार्थी है। बाबा के शब्द क्या है? जो याद के पुरुषार्थी है उन्हीं को रियल नशा चढ़ता है। याद के पुरुषार्थी ब्राह्मण बन गए, यहाँ आ गए, यहाँ रह रहे हैं, परंतु यदि ज्ञान और योग में उन्नति नहीं हो रही है तो अंदर ही अंदर कोई ना कोई दुख रहेगा। सबसे पहला दुख तो यही रहेगा, ऊपर से भले हंस रहे हैं, ऊपर से सब कुछ ठीक चल रहा है, सेवाएं हो रही है, परंतु अगर ज्ञान और योग में उन्नति नहीं हो रही है तो वो पुरुषार्थ हम नहीं कर रहे, इसका दुख हमेशा ही रहेगा आत्मा को। जब तक आत्मा श्रेष्ठ पुरुषार्थ नहीं करती, उसे सुख की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। चाहे वो 10 साल से हो, 20 साल से हो, 50 साल से हो, सेवाधारी हो, इंचार्ज हो या कोई भी हो, जब तक आत्मा ज्ञान और योग से भरपूर नहीं होती तब तक वो अंदर ही अंदर दुखी रहती है। कोई ना कोई दुख उसका पीछा करता है, कोई ना कोई कामना, कोई ना कोई दुख, कोई ना कोई इच्छा। और जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं फिर नाम की इच्छा, ये सारी इच्छाएं वहां धीरे धीरे आ जाती है एक के बाद एक, और भटकाती है, जबरदस्त भटकाती है। माया इतनी सूक्ष्म है कि समझ में नहीं आता कि ये माया है। बाप को पहचानना कठिन है, बाप से भी अधिक कठिन कार्य है माया को पहचानना। बाबा को तो फिर भी आज ही बोला ना, कोटो में कोई कोई बिरला ही, मैं जो हूं मैं जैसा हूं, कोई बिरला ही मुझे जानता है, परंतु माया जो है, माया जैसी है, उसमें विरले में भी जो विरला कोई होगा वही जानेंगे। बहुत ही उसके इतने सटल सूक्ष्म रूप है, हर दिन नए नए रूप है। ये एक पॉइंट और क्या कहा आज
आपने भैया जो बात बताई, इसका मतलब है कि हमें अपने पुरुषार्थ से संतुष्ट रहना चाहिए?
संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, अतृप्त रहनी चाहिए, डिवाइन डिससेटिस्फेक्शन, दैवीय असंतुष्टता रहनी चाहिए हमेशा। अगर पुरुषार्थ में संतुष्टता आ गई तो वही रुक जाएंगे। पुरुषार्थ से कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। जो हम कर रहे हैं हम उससे 10 गुना अधिक कर सकते हैं, इतना कुछ कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर रहे। सबसे पहले तो ये रियलाइजेशन हो कि हम जो कर रहे हैं वो कुछ नहीं है, इससे तो मंजिल बहुत आगे है, बहुत आगे। ये सबसे पहले रियलाइजेशन चाहिए। जब तक ये रियलाइजेशन नहीं, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। संतुष्टता, बाबा जो संतुष्ट मणि का प्रकाश चारों ओर फैलता है, कल भी कहा था सफलता होने के लिए 2 चीजें चाहिए, संतुष्ट रहना और करना। वो संतुष्टता है साधनों से, जो मिला वो ठीक, साधनों से, परिस्थितियों से जो आ रही है, व्यक्तियों से, फैसिलिटीज, सालवेशन जिसको बाबा कहते हैं, वो सब है। परंतु पुरुषार्थ एक इंटरनल एफर्ट है, पुरुषार्थ एक दूसरी चीज है। हम अपने पुरुषार्थ से कभी संतुष्ट ना रहे, हमेशा उन आत्माओं का संग करना है जो हमसे अधिक पुरुषार्थ कर रही है। हम उनको अगर देखें कि जो हमसे कम पुरुषार्थ कर रही है तो हम संतुष्ट रहेंगे, हम इनसे तो आगे हैं, हम कम से कम मुरली तो पढ़ते हैं, ये लोग तो खाली सुनते हैं, हम पढ़ते हैं, चलो कोई पढ़ता है तो हम ये भी सोच सकते हैं, हम इसके ऊपर चिंतन करते हैं, हम ज्यादा टाइम देते हैं, वो एक बार पढ़ता है, हम 2 बार। हमें उन आत्माओं को देखना है जो इस रेस में हमसे आगे है, उनको बताने की भी आवश्यकता नहीं, केवल देखना है, उनका अनुकरण करना है और खुद आगे बढ़ना है। और क्या कहा बाबा ने आज की पहले मुरली हम रिवाइज कर लेते, और क्या कहा? ये जीवन भी हीरे तुल्य, और बाबा ने यहाँ पर वर्षन के लिए कहा है, बाबा की जो महावाक्य है एक एक वर्षन अमूल्य है, हीरे तुल्य है। रत्नाकर की बात बाबा कह रहे थे ना, रत्नाकर, सौदागर, जादूगर। तो भगवान का एक एक वाक्य, एक एक महावाक्य कितना महत्वपूर्ण है। तो हम रोज की जो मुरली है, बाबा ने कहा वही तुम्हारा भोजन है। आज तो कह दिया कि इसके अलावा जो भी ज्ञान है वो सब वेस्ट ऑफ टाइम है, जो भी है। इसके लिए हमारा माइंड जो है ना, इसको डाइवर्ट होने की बहुत ज्यादा आदत है, डिस्ट्रैक्ट होने की। हम अगर कुछ पढ़ रहे हैं तो हमको लगता है वो देखे, फिर वो देखे। जैसे एक ही ले लो, मोबाइल ही ले लो, उसमें कितनी सारी चीजें हैं। हम अपने मोबाइल को कितनी बार देखते हैं, उसकी जरा एक चेकिंग अगर कर लो तो बहुत सारी चीजें जरूरी भी है, पर कितनी बार देखते हैं। मैसेज आ गया, देखा, वो आया, कुछ आया, और आया, कंटिन्यूस। एक एक जहां जहां हमारा माइंड जाता है वो हमारी एनर्जी को खींचता है, आत्मा की एनर्जी जो है उसको 100 डिस्ट्रैक्शन से कहीं ना कहीं जाती है। कोई ना कोई व्यक्ति खींचते है या साधन खींचते है, कुछ भी हो, वो जो भी हमको हमारे ज्ञान और योग से हटाता है उसे ही माया कही जाए, वही माया की परिभाषा है। तो बाबा ने कहा बाप का एक एक वर्षन कैसा है, अमूल्य है, हीरे तुल्य। पर हमने उसको हीरे तुल्य समझा नहीं है। अगर समझा होता तो उसको पकड़ लिया होता। केवल सुनना काफी नहीं है, फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि मुरली केवल सुनना काफी नहीं, जितना टाइम हम दे रहे हैं उतना नॉट इनफ, ज्यादा समय देना पड़ेगा, इस ज्ञान में डूबना पड़ेगा। और क्या कहा बाबा ने? संस्कार लेकर के जाएंगे, सन्यासियों का उदाहरण दिया ना, जैसा जन्म, जैसा पुरुषार्थ, जैसी पढ़ाई वैसा जन्म।
लोगों ने बोला कि निर्माण बनेंगे तो
निर्माण निर्माण अर्थात निर्माण शब्द का अर्थ हिंदी में जब नी लगाया जाता है तो जो आगे का शब्द है उसके विरुद्ध में होता है, उपसर्ग कहा जाता है। जैसे नी, एक होता है प्रत्यय, एक होता है उपसर्ग। नी अर्थात मान रहित, मान नहीं, नी मान, मान की कामना से रहित, मान की इच्छा से रहित। जिसको मान की कामना नहीं है, इच्छा नहीं है, हम्बल, विनम्रचित, उसको निर्माण कहेंगे। एक है बड़ा ना, उसका क्या अर्थ है? दो निर्माण है, एक छोटा ना, एक बड़ा ना। निर्माण,
इनोवेटिव,
निर्माण अर्थात कंस्ट्रक्शन, बनाना। छोटा ना, एक बड़ा ना। इस भाषा को भी बाबा बहुत प्ले करते हैं, इससे खेलते हैं भाषा शब्दों के साथ। छोटा ना है, उसके दो अर्थ है, पहला विनम्र, दूसरा अर्थ है बड़ा ना, कंस्ट्रक्शन। निर्माण कार्य में भी छोटा ना आता है, और बड़ा ना जो है वो एक ही अर्थ है, कंस्ट्रक्शन। तो तुम्हें विश्व का निर्माण करना है, निर्माण चित्त बनो और निर्माण करो, ऐसे भी बहुत सारे मूल्यों में आए हैं। तो क्या कहा बाबा ने आज? निर्माण, और दूसरों को भी मान देना है। तो मान की कामना ऐसी है कि व्यक्ति को उच्चाकांक्षा, जिसको कहते हैं ना एम्बिशियस, बहुत उच्चाकांक्षा एक शब्द है, बहुत एम्बिशियस, संसार की वस्तु एकत्र करना, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी करूँ, वो भी करूँ, ये भी करूँ, आप बहुत सारी चीजें नहीं कर सकते, बहुत सारी चीजों के पीछे भागेंगे ना तो कुछ भी हाथ नहीं है। जैसे वो है वैसे यहाँ पर भी थोड़ा थोड़ा हमको लक्ष्य रखना है जीवन में, इस एक हफ्ते में ये करना है, उस एक हफ्ते में ये करना है, ये इतना दिन में ये हो जाना चाहिए। मेरा एक संस्कार है जो एक साल से चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल अमृत वेले के बाद तुरंत सो जाना, ये एक संस्कार चल रहा है। अगर हमें इसे चेंज करना है तो हमें काम करना पड़ेगा, केवल क्लास में सुन लिया उससे नहीं होगा, थोड़ा काम करना पड़ेगा, दिनचर्या को बदलना पड़ेगा, थोड़ी बहुत टाइम निकालना पड़ेगा रेस्ट के लिए कहीं दोपहर में कहीं और कोई जगह, जो हम रात में जितने बजे सोते हैं उसको थोड़ा कम करना पड़ेगा, जो जागते हैं। कई लोग लेके बैठते हैं कंप्यूटर ही खोलते हैं बराबर 9 बजे और नेट पे लगे रहते हैं, एक साइड से खुलता है दूसरी साइड, एक लिंक दूसरी लिंक करते 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 कब 11-12 बज जाते पता ही नहीं चलता है, और उसमें क्या क्या आता है वो सब देखते रहते हैं, सबसे ज्यादा एनर्जी उसमें जाती है। इसके लक्ष्य रखना है कि 8-8:30 के बाद नेट और ये सारी जो चीजें हैं इसको बंद ही कर दे। पर ये है छोटी सी बात, इसके लिए पर संकल्प की आवश्यकता है, चिंतन की आवश्यकता है, बिना चिंतन के कोई भी समस्या हल नहीं होती है। तो निर्माण चित्त, और क्या कहा पापा ने आज, दिव्य गुण धारण करने, और मोहजीत आज चार्ट के लिए भी बोला, आसुरी एक्ट तो नहीं करते हो, आसुरी कर्म तो नहीं करते हो शरीर द्वारा, आसुरी एक्ट विकर्म, एक है अकर्म सत्युग, एक है विकर्म, एक होता है कुकर्म भी होता है, वो क्या है
जो हमारी मर्यादा से पार।
मूल पुरुषार्थ है पवित्र बनने का, ज्ञान और योग से तुम पावन बनोगे, एक जगह ये भी बोला है। अब ये जो मुरली थी हमने इतने जो पॉइंट्स निकाले, इतने ही पॉइंट्स में हम सबसे पहले ढूंढे थे इसमें मुझे किस पे काम करना है, तो ये जो चार्ट वाली बात कही ना उसमें ये जो प्रश्न है आसुरी एक्ट और विकर्म, विकर्म की क्या परिभाषा बाबा ने दी है, अब तक हम किसको विकर्म कहें, देह अभिमान के वश जो कुछ किया जाता है ये विकर्म है, बहुत बड़ी परिभाषा है, और थोड़ी छोटी प्रैक्टिकल में विकर्म किसको कहें,
आसक्ति के वश,
आसक्ति के वश, चलो फिर भी प्रैक्टिकल एकदम डाउन ग्राउंड लेवल, नियम मर्यादाओं के खिलाफ, और अच्छा हाँ जिससे हम भारी हो जाए, हमारी बुद्धि भारी हो जाए, वो समझ लेना कहीं ना कहीं विकर्म हुआ है। एक और ब्रह्मचर्य का जहाँ खंडन हो रहा है, ब्रह्मचर्य जहाँ खंडन हो रहा है उसको विकर्म कहेंगे। हाँ जैसे संडे की मुरली में कहा था ना भगवान, शुद्ध संकल्प के सागर में लहराते रहो और बीच बीच में क्या करो, गहराई में जाओ, तले में जाओ, और साइलेंस सेकंड संकल्प, संकल्प शक्ति को कंट्रोल में करो, तीन शक्ति है मन बुद्धि और संस्कार, तीनों पर अधिकार हो, एक पर भी अधिकार कम होगा तो वरदानी स्वरूप जितना बनना चाहिए उतना नहीं बन सकते, इसके लिए इस वर्ष इन तीनों अधिकार में जो कमी है उसको महायज्ञ महासेवा में स्वाहा करो, ये एक होमवर्क है उस मुरली का, मन बुद्धि और संस्कार। मन ही बहुत चालाक है, बहुत छल कपट करता है, बहुत बार हमको धोखा देता है, हमको लगता है ऐसा नहीं ऐसा हो जाएगा पर वो धोखा देता है। तो जहां जहां ब्रह्मचर्य खंडित होगा वहां वहां वो विकर्म है, वो सबसे बड़ा विकर्म है एक्चुअली, और ब्रह्मचर्य खंडित तब तक होगा जब तक उसको उस तरह के ट्रिगर मिलेंगे। आपने कुछ देख लिया, कुछ सुन लिया, किसी की देह देख ली और देह की तरफ ध्यान दे, वो आकर्षण होगा। इसके लिए जहां पर भी ब्रह्मचर्य खंडन होगा वहां पर विकर्म है। और विकर्म किसको कहा बाबा ने? और किसी को भी याद किया वो भी विकर्म है। एक मुर्गे में था ना परचिंतन, ये भी सूक्ष्म विकर्म। दूसरे क्या कर रहे हैं इसमें, एक होता है हाँ, पर एक जरूरी है कि हमको हरेक के स्वभाव का थोड़ा थोड़ा पता चाहिए, नहीं तो हम खुद डिस्टर्ब हो जाएंगे। जिनके संबंध संपर्क में हम हैं उन आत्माओं का स्वभाव संस्कार हमको पता चाहिए। बाबा ने कहा तुमको हर पत्ते का ज्ञान होना चाहिए, इसके लिए उसको परचिंतन नहीं कहेंगे हम। अगर उसके बारे में सोच रहे व्यर्थ ही सोच रहे, परंतु हाँ जिनके बीच में हमको काम करना है, वो जो 10 लोग हैं या 6 लोग हैं 5 लोग हैं, उस हरेक का स्वभाव हमको पता चाहिए। अभी किसी का स्वभाव ही ऐसा है कि आप कुछ भी करो उनको डांटने की आदत है, तो हमको वो स्वभाव भी पता चाहिए। नहीं अगर पता चाहिए रहेगा, हमने चिंतन नहीं किया है उस स्वभाव के बारे में, तो हम बार बार ही डिस्टर्ब होते रहेंगे। इसके लिए ये भी पता चाहिए इसका ये स्वभाव है।
बाबा ने बोला प्राइमरी मन की स्थिति ऐसी होनी चाहिए, योग की अवस्था ऐसी होनी चाहिए, और उसका पुरुषार्थ और स्वर का पुरुषार्थ के बारे में पता चले।
हाँ कुछ दिन पहले वरदान था
ना,
तो ऐसा हमारी स्थिति हो कि स्व का पुरुषार्थ और दूसरे के पुरुषार्थ का भी पता हो जाए। जैसे संडे के मुरली में भी कहा एक समय कैसा आएगा ड्रामा और आपके संकल्प जैसे पैरेलल चलेंगे, जो होना है यही होना है और वही होगा, ये देखा हुआ है और यही होगा, ये होगा। ऐसे नहीं एक सेकंड के बाद में भी क्या होने वाला है वो तुमको पता चल जाएगा। ड्रामा के सीन, ड्रामा के पर्दे के पीछे कौन सी सीन है इसकी अनुभूति होगी। कितनी अच्छी
बात है, मुरली में बहुत चीजें आती
है, परंतु चिंतन हमारा चलना चाहिए। हमारी बुद्धि जो है ना वो इधर उधर इतने उसको जाने की आदत है, भटकती है, इसके लिए मुरली में ठहरती नहीं है। इसके लिए वो उसको जैसे किसी की गर्दन पकड़कर उसको डुबाया जाता है ना पानी में, तो वैसे मन की गर्दन पकड़कर उसको ज्ञान में थोड़ा डुबाना पड़ेगा। उसका आदत ही नहीं है, स्वभाव नहीं है, उसका स्वभाव भागने का है। डिस्ट्रैक्शन, नई नई चीजें, ये देखो वो देखो, ये देखो वो देखो, ये देखो ये भी करूँ वो भी करूँ, ऐसे भी करूँ वो भी करूँ ये भी करूँ, और कहीं पर भी स्थिर नहीं होता है। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, उनको कोई कोई बीमारी होती है कि जिसमें एक जगह 5 मिनट भी नहीं बैठता बच्चा, ऐसी एक बीमारी है बच्चों की, एकदम चंचल, इतना चंचल, उसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट है, उसका काउंसिलिंग। मन भी वैसा ही है, इधर भी नहीं बैठता उधर भी नहीं बैठता, थोड़ा इधर फिर उधर फिर उधर फिर उधर, अभी इसको फोन अभी इसको मैसेज अभी इसको मेल, इधर से उधर फॉरवर्ड ही करते रह रहे। बस फॉरवर्ड करने का अधिकार उन्हीं को है, कोई भी ज्ञान की पॉइंट जिन्होंने खुद उसको पढ़ा है धारण किया है। अभी भी क्लास आई और करो फॉरवर्ड 10 लोगों को, बस उसमें आधे से ज्यादा ब्राह्मण तो इसमें लगे हुए हैं। कोई भी क्लास कोई भी पॉइंट सोचते हैं, दूसरों का कल्याण किया, खुद का किया क्या? अभी भी कोई अच्छा पॉइंट किसी ने भेजा होगा तीव्र पुरुषार्थियों के लिए, क्या 50 पॉइंट भेजो, खुद पढ़ा भी नहीं है, पढ़ा है नहीं, बस आया और भेजो, ये भेजने में ही लगे हुए। चलो सूक्ष्म मान शांति से छोड़ दो, परंतु एनर्जी जा रही है उसमें। हमने क्या खुद पढ़ा उसको, रिप्लाई किसकी किसकी आ रहा है, ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है ऐसे आ रहा है क्या आ रहा है, कितनी जबरदस्त माया है ये भी। किसने बोला तुमको कोई ड्यूटी दी है किसी ने फॉरवर्ड करने की? तुमने खुद धारण किया है, खुद पढ़ा है, चाहे वो कोई क्लास हो चाहे कोई आर्टिकल हो कुछ भी हो, आया है ना अगर आपके पास, पहले खुद ही उसको पढ़ो स्टडी करो, फॉरवर्ड नहीं करो, फिर फोन करके उसमें क्या सार है वो बताओ, फिर बिना देखे वो सेवा हो सकती है। उसमें तो खाली एनर्जी जा रही है, मिल कुछ नहीं रहा है। ब्राह्मणों की एनर्जी टीवी मोबाइल और इंटरनेट, ये 3 में सबसे ज्यादा वेस्ट हो रही है। टीवी तो चलो इतना नहीं है अभी, पर सीरियल्स, कई लोग सीरियल में लगे हुए हैं, कौन से सीरियल में कौन सा क्या चालू है, तुमको क्या करना है उसके लिए आए थे कि यहाँ सीरियल देखने?
कोई कहते कि हिस्ट्री के हैं बड़े,
हाँ इतिहास के ठीक है, पर हाँ उसको भी देखना है ना, उसकी विधि है। फिर आप उसको इस तरह से देखो कि उसमें से अच्छी अच्छी चीजें लो, उसको लिखो, उसमें अच्छे 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 शब्द आते हैं वो लो लिखो, और उसको मन में फिर रिवाइज भी करो थोड़े कि ये सीन ऐसा है, इसमें ये दिखाया गया, तो थोड़ी बहुत उससे उन्नति हो सकती है, नहीं तो वो केवल एंटरटेनमेंट है। एंटरटेनमेंट के लिए कुछ नहीं पढ़ना है, अपना ज्ञान वर्धन के लिए पढ़े तो देखे तो कोई दूसरी बात है। और अभी जितने दिखाते हैं उसमें तो सब वो काल्पनिक है, वो इतिहास के साथ छेड़छाड़ करते हैं हमें, क्या वो इतिहास है? अगर देखना ही है, हाँ अगर सीरियल की बात अगर आ रही है, देखना ही है तो मैं कहूंगा चाणक्य देखो, एक एक वाक्य इतना पावरफुल है उसमें, पुराना। देखना ही है तो भारत एक खोज करके एक सीरियल है वो देखो, जिसमें आपका इतिहास का ज्ञान बढ़ेगा, भारत में द्वापर से अब तक कौन कौन से राजा आए, उन्होंने क्या क्या किया। पर अभी बहुत सारे जो सीरियल है उसमें इतना छेड़छाड़ है, बहुत सारा क्या कर दिया उसने, वो इतिहास कुछ और ही था। अच्छा, और जब अगर देख रहे हैं ना आप, साथ साथ उसको पढ़ना भी है फिर। मगर आप फॉर एग्जाम्पल महाभारत देख रहे हैं तो महाभारत का साथ साथ पढ़ना भी है, साथ साथ अर्जुन कौन था उसके बारे में पूरा पढ़ो, भीम कौन था उसके बारे में साथ साथ, वो देखना और पढ़ना, देखना और पढ़ना साथ साथ हो, ताकि वो हमारा देखना सार्थक हो जाए और तुरंत उसको ज्ञान के साथ जोड़े। ऐसा कोई नहीं करता है, लोग क्या करते हैं एंटरटेनमेंट, उसमें पूरी एनर्जी चली जाती है लोगों की। और आजकल तो नया चालू हुआ है वो, उसके सामने बैठ के भोजन, टीवी के सामने। कोई कोई तो ऐसे भी हम बाबा की याद में खा रहे हैं, टीवी सामने है, बाबा को याद भी कर रहे हैं, टीवी भी देख रहे हैं और भोजन भी कर रहे हैं, तीनों चीजें एक साथ कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। अब कोई किसी को बोल नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, जीवन में कुछ कुछ एंटरटेनमेंट जरूरी है। और जैसे कहा ना ऐतिहासिक ये धारावाहिक जो है ये बहुत अच्छे अच्छे है कुछ कुछ, परंतु वही फिर टाइम कितना है हमारे पास। और उसमें ऐसा है कि वो जो एंड होता है ना जहां पर, वो इतना एक्साइटमेंट होता है कि वो एकदम ऐसा साधा एंड नहीं होता है, ऐसे पॉइंट पे छोड़ देते कि अब आगे क्या होने वाला, इसकी उत्सुकता बनी रहती है। ये एक दूसरी जबरदस्त माया है फिर, इसके लिए ज्ञान का विचार अगर मंथन नहीं चलता है उसका ज्यादा चलता है। मैं यही कह रहा हूँ कि देखना ही है ना, तो एक रामायण है, एक महाभारत है, चाणक्य है, भारत एक खोज है, ऐसे कुछ तीन चार है ये जो अच्छे है, और जो हमको पहले से स्टोरी पता है तो उसमें एक्साइटमेंट नहीं रहेगा। हम अभी देख किसके रहे हैं, वो जो संवाद है, किस तरह के संवाद है, किस तरह की वो भाषा शैली है, जिनको हिंदी नहीं आता है वो हिंदी सीखने के लिए उसको पढ़ेंगे, क्योंकि जब तक हिंदी नहीं सीखेंगे बाबा को नहीं समझ पाएंगे, एकदम क्लियर कट है। क्योंकि ज्ञान जो है वो भाषा में लॉक्ड है, बंद है, ज्ञान भाषा में बंद है। बाबा की जो भाषा है उसको समझने के लिए बहुत अच्छा कंट्रोल चाहिए, एक अधिकार चाहिए भाषा पर, तब तक वो भाषा हम नहीं समझ पाते। उसके लिए अगर देख रहे हैं तो जस्टिफाइड है, अदरवाइज वो वेस्ट ऑफ टाइम। लोग जिसके लिए देख रहे हैं ना वो वेस्ट ऑफ टाइम है, वो देखना भी है तो फिर वो टीवी पर नहीं देखो, क्योंकि टीवी पर देखते समय आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर, वो आपके पास पहले से ही चाहिए कि ये है। हाँ, मतलब क्लिप या ऑडियो वीडियो जो भी, ये तो चलो दूसरा एक सब्जेक्ट में चले गए हम, पर वो भी एक, जैसे कि मैं कहूंगा हम अगर सब कुछ कर रहे हैं और हमारे पास फिर भी थोड़ा बहुत 15-20 मिनट डेली अगर देख रहे हैं तो कोई हर्जा नहीं, 15-20 मिनट, और वो भी देखकर उसके ऊपर पढ़े, वो जो देखा ना उसी को मन में अपने शब्दों में वर्णन करे उसको, जैसे कि हमको किसी को सुनाना है, तो जिससे हमारा जिसको कहते वर्णन करने की जो शक्ति है, तो हमको वो शक्ति डेवलप हो गई तो इधर ज्ञान का भी विस्तार करने की शक्ति अपने आप आएगी, तो वो इस तरह से काम में है। अच्छा चलो, अभी आज की मुरली हुई, संडे की आज की, और एक जो पॉइंट आपने कही, और एक पॉइंट है कुर्बान होने वाली, क्या वायदा किया था आप आएंगे तो कुर्बान जाएंगे, कुर्बानी समर्पण, न्यौछावर होना, फिदा होना, ये सारे शब्द, बलिहार जाना हिंदी में, और एक शब्द है उत्सर्ग, झटकू, तो इसकी क्या परिभाषा है, समर्पण की परिभाषा क्या है? क्या समर्पण कोई उत्सव है? जिसे मनाया जाए, फोटो लिए जाए, बैंड बाजे बजाए जाए, वो पहनाया जाए कुछ कुछ ताज और ये, समर्पण क्या है? समर्पण कोई उत्सव है? समर्पण स्थिति का नाम है, किसी फेस्टिवल का, किसी सेलिब्रेशन का नाम नहीं है। सबसे पहली डेफिनेशन ये है समर्पण की, इट इज द स्टेट ऑफ माइंड नॉट सेलिब्रेशन। समर्पण जो है वो एक मन की स्थिति है, वो कोई एक समारोह नहीं है। समर्पण समारोह होता है ना, समर्पण समारोह, 100 कन्या, 20 कन्या, 50 कन्या, और उसमें फिर पिकनिक, और उसमें वो, और उसमें वो, और उसमें डांस। आज मेरे किसकी शादी है, बहन की शादी है, सब गीत सारे क्या क्या होता है उसमें, इसका समर्पण से कोई लेना देना नहीं है। संडे की मुरली फिर से याद करो, बाबा को स्थूल कुछ नहीं चाहिए, भाषण, झांकिया, स्टेज, चित्र। क्या कहा बाबा को, क्या चाहिए? बाप समान चैतन्य चित्र बनो, एक स्टेज, कर्मातीत की स्टेज पर खड़े रहो, और क्या वरदानी स्वरूप, तीसरा झांकिया कौन सी, लाइट हाउस माइट हाउस की झांकिया। भाषण कौन सा, साइलेंस और संकल्प शक्ति का भाषण। देखा बाबा स्थूल देख रहे हैं परंतु तुरंत सूक्ष्म में जाता है, स्थूल कर ही रहे सब लोग, उसकी स्तुति करता है, बोले बहुत अच्छा, नीचे साकारी सृष्टि को अच्छा सजाया है, उसी संडे की मुरली से अच्छा सजाया है, बहुत अच्छा, भिन्न भिन्न पुष्पों से सजाया है, बहुत अच्छा, पर बाबा स्थूल कुछ देख ही नहीं रहा है, उसको स्थूल से कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे उसका सारा जो चल रहा है मुरली, चल कितनी गहराई में चल रही है, पर समझ कितना रहा है हमको, हम वही स्थूल में लगे हैं। समर्पण एक स्थिति का नाम है, मानसिक स्थिति। मन धन, शरीर दे दिया, मन दे दिया, बुद्धि दे दी, संस्कार उसको अर्पण कर दिए, समय, संकल्प, श्वास, सब कुछ दे दिया, वो एक अवस्था का नाम है। समर्पण किसी बैच का नाम नहीं है, समर्पण किसी कपड़े का नाम नहीं है, तो स्थिति का नाम है, कुर्बानी, ऊंची बहुत स्टेज है, अवस्था में ही रहना है। जैसे वो समर्पित अवस्था है, एक इट इज द नेम ऑफ द स्टेट नॉट सेलिब्रेशन। और संडे की मुरली से और कोई पॉइंट बताएंगे? चार धाम, यहाँ चार धाम, भक्ति में चार धाम, यहाँ रो क्यू लाइन, भक्ति में भी क्यू, यहाँ वहां सत्य वचन महाराज, यहाँ सत्कर्म। और क्या कहा,
मालिकम, आगे आगे करते,
मालिकम सलाम। यहाँ भगवान बच्चों के साथ साथ परिक्रमा करते हैं, भगवान बच्चों के पीछे पीछे परिक्रमा करते हैं, दोनों शब्द आए हैं। वहां पर परिक्रमा की जाती है, यहाँ पर भी परिक्रमा करते हैं। चार धाम, भक्ति में भी चार धाम है, कौन से, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। उत्तर में बद्रीनाथ, दक्षिण में रामेश्वरम, पूर्व में जगन्नाथपुरी, और पश्चिम में द्वारका। चार धाम है ना भक्ति में, यहां पर भी चार धाम। अगर शक्तिशाली बनने की आवश्यकता है तो शांति स्तंभ पर पहुंच जाना, अगर बात समान बनने का दृढ़ संकल्प उत्पन्न हो तो बाप के कमरे में आ जाना, अगर व्यर्थ संकल्प तेज चल रहे हो तो हिस्ट्री हॉल में पहुंच जाना, अगर उदास हो जाओ तो बाप से रूरियान करने झोपड़ी में आ जाना। कितनी अच्छी कविता लिखी है बाबा ने, पहुंच जाना आ जाना, पहुंच जाना आ जाना, लिखी है हिस्ट्री हॉल के बाहर, देखा ना। एक है स्थूल में पहुंच जाना शरीर से, उससे अधिक पावरफुल है यहां बैठे बैठे मन से वहां पहुंच जाना, ये 100 गुना अधिक शक्तिशाली है। एक है स्थूल में ही पहुंच गए, वहां पहुंच के भी भटक रही है बुद्धि, जैसे भक्ति मार्ग में चार यात्रा कैसे करते, फटाफट एक मिनट इधर, कुछ लोग हैं अमृत के सामने देखा, फटाफट इधर शांति स्थल में बैठे, अभी बैठे भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, बस बैठे और उठे, फिर इधर से बाबा के कमरे में भी बैठे और तुरंत उठे, भक्ति मार्ग। कुछ दिनों पहले एक माता, मतलब अमृत वेले 4 बजे 4:15 हो गए होंगे, परिक्रमा चालू की कुटिया की, एक थी से दूसरी तीसरी 15 मिनट तक चालू था, जब तक कि एक भाई ने उठा के उसको रोका नहीं, परिक्रमा चालू ही थी कुटिया की। भक्ति छूटती नहीं है, इतना आसान नहीं है भक्ति छोड़ना। एक पूरी मुरली, साकार मुरली इसी ऊपर, इसके ऊपर है कि तुम सब भक्त हो, तुम में से कोई भी ज्ञानी नहीं, पूरी मुरली इसके ऊपर है, आएगी कभी फिर तो कुछ वर्षों में, पूरी मुरली एक ही बात पर है कि तुम सब भक्त हो, बस तुम में ज्ञानी कोई भी नहीं है। मानते रहते हैं ना, चाहिए सबसे ज्यादा क्या चाहिए, ब्राह्मणों को स्नेह चाहिए। नहीं वो दूसरी बात है, तुम सच्चे सच्चे भक्त, तुमने सबसे ज्यादा भक्ति की है, तुमने भक्ति की है, जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो ज्ञान भी सबसे ज्यादा लेगा, जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है वो पद भी ऊंच पाएगा, जिसने सबसे ज्यादा भक्ति की है उसकी स्थिति भी सबसे ज्यादा अच्छी होगी, वो ज्ञान रतन भी बाबा से आगे सबसे ज्यादा लेगा, योगी भी सबसे बड़ा बनेगा। ये दूसरी पॉइंट है, ये दूसरी पॉइंट है, ये पॉइंट है कि तुम हो अभी, अभी भक्त हो तुम। क्यों भक्त है? मांगना, स्नेह, सहयोग, केयर, नाम, वो तो थोड़ा स्थूल, ये उससे भी सूक्ष्म है, ये तीन। हम अगर बीमार पड़ जाए तो कोई देखने आए, कोई पूछने वाला मुझे, हम अगर बीमार पड़े कोई पूछे तो कमरे वाला, पूछते भी नहीं, खाना खाया नहीं खाया, कामनाएं तो होती है हमने, होती है कि नहीं। एक बार मैं बीमार पड़ा था, वो कोई भाई बोले खिचड़ी लेके आता हूँ, सुबह गया शाम तक आया ही नहीं। केयर, प्रेम, सहयोग, इसकी कामनाएं हैं, सबसे पहले इन कामनाओं को नष्ट करो। इस संसार के किसी व्यक्ति से हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तो प्यार चाहिए, ना तो सहयोग चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये दृढ़ संकल्प अंदर हो, फिर जहां आवश्यकता होगी आवश्यकता अनुसार वो मिलेगा आप ही। क्योंकि सबसे बड़ा दुख का जो कारण है, बाबा ने जो आज कहा कि दुख में टाइम वेस्ट कर रहे हो, वो है एक्सपेक्टेशन, अपेक्षाएं। आत्माओं से हमें बहुत बड़ी बड़ी अपेक्षा है हमारी, हम उसको कहीं प्रकट नहीं करते, परंतु अपेक्षा है, वो सागर की लहरों की तरह है, लहरें आती है और फिर चट्टानों को टकराती है और खत्म होती है। ये वास्तविकता जैसे वो चट्टान, लहरें आती है उसको टकराती है और नष्ट होती है। किसी से क्या एक्सपेक्टेशन रखना है, बाप तुम्हें सब कुछ दे रहा है, जो मांगना है उससे मांगो। बाबा ने तो मांगने के लिए मना ही कर दिया हमेशा, तुमको मांगना है ही नहीं, सब कुछ दे दिया है। तो कामना है। और फंडे की मुरली में क्या कहा,
जो जितना स्मृति स्वरूप है,
जो जितना
स्मृति स्वरूप है वो उसकी माला उतनी सी मिल जाती है।
बाबा ने यहाँ पर कहा कि बाबा ने बच्चों को वरदान दिया है बिना सोचे समझे, स्मृति स्वरूप की मुरली दूसरी 18 जनवरी की 20 तारीख की चल रही, बिना बाबा ने बिना सोचे समझे, ये नहीं देखा कैसा है, बड़ा है
छोटा है,
बच्चा है वृद्ध है, बड़े पोजीशन पे है साधारण है, किस देश से है, किस धर्म का है, बीमार है तंदुरुस्त है, ये कुछ नहीं देखा, सबको वरदान दे दिया, जो है जैसा है मेरा है। स्मृति का स्विच ऑन किया, तू मेरा है, स्मृति का स्विच ऑन किया, तू मेरा है, जो हो जैसे हो तुम मेरे हो। अभी ये वरदान की दो माला है, दो ग्रुप हो गए वहां पर, कोई कोई है जो सदा स्मृति स्वरूप है तो उनकी माला से मिली जाती है, सिमरते जो है कभी कभी है उनकी माला फिर कभी कभी से मिली जाती है। ये एक अच्छा पॉइंट बाबा ने उस मुरली में बोला हुआ है। और जो फर्स्ट मुरली है उसने वरदान दिया है, क्यों वरदान दिया कि स्मृति सुबह से ही स्मृति भव का ये वरदान बाबा अमृत वेले देख रहे हैं, जैसे चमकती हुई अमूल्य मणियां हैं, श्रृंगार है, बाबा ने श्रृंगार कहा ना, तुम सब कौन हो, श्रृंगार हो, तो ये जो श्रृंगार है स्मृति भव का वरदान दिया है, जो याद और सेवा का जो बैलेंस रहता है वही ब्राह्मण जीवन है, याद और सेवा का बैलेंस नहीं तो ब्राह्मण जीवन नहीं, सीधा सीधा बोल दिया, मुख में और बुद्धि में बाबा हो, हर कर्म में बाबा, चलो बच्चे करते, बच्चों को आगे रखते स्वयं पीछे रखते, स्वयं बालक बच्चे को मालिक बनाते। और क्या कहा संडे की मुरली,
मनसा सेवा के लिए,
हाँ मनसा सेवा के लिए सबसे पहले तो वो जो शुद्ध संकल्पों के सागर में लहराते रहो, इसका सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है कि हमारी बुद्धि सारे दिन भर कुछ ना कुछ शुद्ध संकल्प लेकर रहे। शुद्ध संकल्प कहाँ से आएंगे, सबसे पहले तो मुरली है, उससे हमने कुछ ले लिया, फिर सारे दिन भर में ज्ञान सरोवर में जितने भी आपको स्लोगन जहां जहां लगे हैं जहां पहले उसको देखना, केवल देखना, थोड़े देर बुद्धि को वहां टिकाना ठहराना कहीं पर भी, जैसे कहीं लिखा है इंद्रियों का आकर्षण ही सभी दुखों का कारण है, जड़ है, नहीं लिखा है यहीं पे, वहां पे थोड़ा उसको रोक, बुद्धि को रोकना वहां पर, क्यों कैसे कब कहां ये सारे प्रश्न मन में आने चाहिए, कुछ भी देखते हैं ज्ञान की चीज क्यों, इस तरह से मन में जब आते हैं ना, क्या क्यों कैसे कब, वो क्यों दूसरे, वो परिस्थितियों के लिए क्यों दूसरा, वो जो बाबा ने कहा क्यों की क्यों नहीं लगा वो दूसरी, ये चिंतन की बात चल रही है। कोई भी शब्द कोई भी महावाक्य देखा, जस्ट व्हेन ऑल एल्स इज लॉस्ट फ्यूचर स्टिल रिमेन्स, ये छोटा सा वाक्य है, जब सब कुछ चला जाता है भविष्य फिर भी है, तो यहां से हम उस स्लोगन को यहां से बैठ के पढ़ा, अभी भविष्य क्या है, फिर हमारा भविष्य क्या है, हमारा भवितव्य क्या है, बाबा क्या कहते हैं भविष्य के बारे में, अच्छा भविष्य के बारे में कभी विनाश की पॉइंट क्या क्या है, फिर भविष्य के बारे में एडवांस पार्टी का क्या क्या है, फिर भविष्य के बारे में प्रत्यक्षता कैसी होगी, जैसे संडे की मुरली में आ जाओ, एक बहुत ही सुंदर शब्द है उसमें, जब अनुभव समान साक्षात्कार, पढ़ा दादियों से मुलाकात, अनुभव समान साक्षात्कार, तब क्या होगा प्रत्यक्षता होगी। साक्षात्कार की परिभाषा क्या दी कि जैसे ब्रह्मा बाबा का उदाहरण दिया, अभी अभी यहाँ और अभी अभी गायब, अभी अभी यहाँ अभी अभी गुम, अभी अभी यहाँ अभी अभी अंडरग्राउंड, अभी अभी यहाँ अभी अभी एकांतवासी, बोलते बोलते कार्य करते करते डायरेक्शन देते देते सुनते सुनते, तो ये जो अवस्था थी इसी को लोगों, यही लोग कहेंगे कि यही साक्षात्कार है, तो अनुभव समान साक्षात्कार। साक्षात्कार कोई वही नहीं है कि कोई पंख दिखेंगे या लाइट दिखेगा, ये दिखेगा वो दिखेगा, वो नहीं, ये अनुभव ही साक्षात्कार है। अनुभव समान साक्षात्कार से प्रत्यक्षता होगी, प्रत्यक्ष फल की सीजन में ही प्रत्यक्षता होगी। कितनी अच्छी पॉइंट है उसमें, तो एक एक पॉइंट हमारी बुद्धि में अच्छे से फिट हो जाए तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं ज्ञान के लिए, और उसको फिर योग में यूज करना है। हम कौन सी बात कर रहे थे पहले,
वरदानी,
हाँ
शुद्ध कर्म,
शुद्ध संकल्प, हाँ, तो सारा दिन भर शुद्ध भी है, जैसे स्लोगन का उदाहरण दे रहे थे ना, तो सारे दिन भर बुद्धि में कुछ ना कुछ शुद्ध संकल्प यहाँ वहां से लेते रहे, स्लोगन एक, मुरली दो, तीसरा
बुक्स,
कोई क्लास, कोई बुक, कोई पत्र पुष्प, हमारे पास पढ़ने के लिए बहुत है। और मैं और एक चाहूंगा, पार्क में जो छोटी छोटी किताब, आप यहाँ रोज बैठते हैं, कभी कभी बैठते हैं,
हाँ मतलब रोज उधर
उधर,
हाँ।
तो उसमें क्या पढ़ते हैं कुछ,
जो डेली मूल्य होती है उसमें जो डेली प्रैक्टिकल किया है उसका कुछ अनुभव है तो शेयर करते हैं,
एक तो वो भी करना है, दूसरा आप एक और एक अभ्यास चालू कर सकते हैं, पार्क की छोटी छोटी जो किताबें हैं ना वो एक किताब ले लो, जैसे
अनुभूति में बताया,
हाँ अनुभूति तो वो पर्सनल लेवल पे करना है आपको, पार्क की किताब जैसे वो जो कंपाइलेशन वाली है ना, जैसे फॉर एग्जांपल धर्मराज, थोड़ी पावरफुल किताबें लेना, पश्चाताप इस तरह की, तो ये जो किताबें है ना उसको छोटा छोटा है, वो कंपाइलेशन है, ये साल की इतना पैराग्राफ, वो साल का इतना, उसमें से दो पैराग्राफ रोज संगठन में पढ़ना, एक जन पढ़ेगा हर दिन, दूसरा दूसरा पढ़ेगा, आज आपने पढ़ा फिर आप कहेंगे कि कल दूसरा पड़ेगा दो पैराग्राफ, उसको वो दे देना ताकि वो उसको उसके ऊपर तैयार करके आएगा दूसरे दिन, इस तरह से। तो एक महीने में एक किताब ऐसी खत्म करनी है, एक एक किताब चालू करो। एक होता है कई लोग क्या करते हैं, चलो हम पूरी मुरली अब पढ़ना चालू करते हैं 69 से लेके, सबसे पहले नशा यही है 69 से सारी मुरलियां, 69 की मुरलियां इतनी हायर लेवल की है, अव्यक्त स्थितियों का ही उसमें ज्यादा वर्णन है, थोड़ा दिन पढ़ते और छोड़ देते। आज तक मैं कितनों को देखा कि जो इतने नशे में कहते हैं कि अभी हमने 69 की मुरलियां चालू की है, चालू की और कुछ दिनों के बाद हाँ गए, क्योंकि मुरलियां जो हम पढ़ रहे हैं वो ग्राउंड लेवल पे कुछ उसका प्रैक्टिकल दिखना चाहिए, केवल वो मुरली मुरली नहीं रह जाए, उसके विचार और हमारे विचार एक हो जाए, हमारे संकल्पों में उससे कुछ हल चला जाए। ऐसा कुछ करना है कि जिसे जागा हुआ व्यक्ति को उठाना है ना, थोड़ी हलचल। बाबा ने कहा ना हल चलाओ तो हलचल होगी, कहा ना महायज्ञ की सेवा, तीन चार स्टेप बताई, सबसे पहले हल चलाओ, फिर क्या होगी, फिर बीज डालो, फिर पानी शीतलता के स्वरूप से या साइलेंस की पावर से बीज डालो, उसके बाद में फल, फल जो निकलना है इसमें वरदानी स्वरूप चाहिए। फिर वो मुरली वहां से चेंज की, वरदानी स्वरूप क्या है उसका, पहला वरदान जन्म से ही कौन सा मिला। तो हम फिर वही बात पे आ रहे हैं कि सारे दिन भर हमारे बुद्धि इधर उधर के संकल्प न करते हुए ज्ञान के संकल्प करे। बाबा ने कहा सारे दिन भर शुद्ध संकल्पों में रहो, लहराते रहो, और बीच बीच में जैसे योग का समय आ गया वो शुद्ध संकल्प सारे दिन भर अगर रहे ना तो योग शाम का स्वतः ही एकदम अशरीर। और सबसे मुख्य पॉइंट उस मुरली में बाबा ने कही एकांतवासी बनना, अर्थात अंडरग्राउंड। उदाहरण दिया जैसे वो साइंटिस्ट कोई न्यू इन्वेंशन करते हैं, शक्तिशाली इन्वेंशन करते हैं तो अंडरग्राउंड हो जाते हैं, अंडरग्राउंड अर्थात ही एकांतवासी, एकांतवासी अंडरग्राउंड गुम गायब, ऐसे चार महत्वपूर्ण शब्द हैं वहां पर। और वो कब करना है, इकट्ठा आधा घंटा एक घंटा नहीं मिलेगा, पांच पांच मिनट भी मिला ना तो उसमें ही, पांच पांच मिनट मिला उसी में एकांतवासी हो जाएंगे।
टैंक की चोरी
कर देना, चुरा लेना है पल थोड़े थोड़े, ऐसा मिलेगा ही नहीं। अगर ऐसा मिल गया ना किसी को कि भाई आज से तुम सेवा नहीं करो, दस दिन केवल पुरुषार्थ करो, वो जो दस दिन होंगे ना उसमें पागल भी होने की संभावना है, पागल भी हो सकता है व्यक्ति। अगर उसको कहा जाए कि भाई सेवा नहीं करो तुम, केवल पुरुषार्थ करो, पहला दिन तो बहुत अच्छा करेगा, पुरुषार्थ करेगा करेगा, फिर बुद्धि भटकना चालू हो जाएगी, और दस दिन के बाद फिर लगेगा अरे इससे अच्छा सेवा करते कुछ दुआएं तो मिलती कम से कम, वो पश्चाताप भी होगा साथ साथ, पुरुषार्थ तो किया ही नहीं जिसके लिए छुट्टी ली थी, और जो दुआएं हैं वो दुआएं भी नहीं मिली और घाटे में चला गया। इसके लिए जो चल रहा है वही सबसे बेस्ट है, जिस डिपार्टमेंट में हो बेस्ट डिपार्टमेंट है, जो आसपास लोग हैं ना जो डिस्टर्ब करते हैं वो बहुत जरूरी है, होना ही चाहिए, उन्होंने बहुत जरूरी है उनका, जो पुरुषार्थ करने नहीं देते, अभी पुरुषार्थ करो तो उठाते हैं ये करो वो करो इधर जाओ उधर जाओ, वही चाहिए, वही लोग चाहिए, वही स्थान और जो समय है पुरुषार्थ का बेस्ट है। और जो ड्यूटी आवर्स है, कभी मॉर्निंग कभी इवनिंग कभी नाइट, हमारी इधर ऐसी होती है किसी किसी की हॉस्पिटल में, तो ये जो है ना यही सबसे बेस्ट टाइम है, ये जो तुम्हारा रोटेटिंग है ना यही बहुत अच्छा है, और ये जो तुम्हारा इमरजेंसी है ना कभी भी बुला लेते हैं, इससे तो बेस्ट कुछ है ही नहीं
भाई।
जो जो को जिनके पास जितना ज्यादा टाइम है, खाली जो बैठे हैं ना वो कम सबसे लीस्ट पुरुषार्थियों में उनका नाम है, नहीं कर पाते। योगी बनने के लिए टाइम थोड़ी चाहिए रहता है, योगी बनने के लिए टाइम नहीं चाहिए, संकल्प चाहिए, जिसको बनना है वो कहीं पर भी बन जाएगा। हमारे यहाँ डॉक्टर्स हैं जूनियर डॉक्टर्स, उसमें से एक दो बीके है, वो लोग कहते हैं 18 जनवरी के दिन हमको खाली मॉर्निंग ड्यूटी देना, ताकि उनकी रोटेटिंग ड्यूटी होती है, आज मॉर्निंग दूसरे दिन इवनिंग कल नाइट, ऐसे रोटेटिंग ड्यूटी रहती है। वो कहते हैं 18 जनवरी की बहुत तपस्या करनी, 1 तारीख से 18 तारीख तक मॉर्निंग ड्यूटी। वो देखा गया वो जो मॉर्निंग ड्यूटी रही ना वो इवनिंग में तो कभी सो रहे हैं तो कभी कुछ कर रहे हैं, वो जिसके लिए लिया था मॉर्निंग ड्यूटी वो छोड़ के कुछ और ही पे किया, उससे अच्छा तो पहले ही जो था ना वही अच्छा था, इसके लिए जो टाइम बाबा ने कहा इकट्ठा नहीं मिलेगा टाइम, बस जो है ना अभी वही सबसे बेस्ट है, उसी को यूटिलाइज करो। आपको लगता है अरे मेरा ये छूट रहा है, वो छूट रहा है, मेरी मुरली के टाइम पे ये होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है, बहुत बढ़िया, उसी में एडजस्ट करो, उसी में टाइम नहीं करो। अगर हम मेरा खुद का हमारी दिनचर्या कैसी है, सुबह से लेकर रात तक पेशेंस, ऐसा नहीं कि रात आप लोग तो सो जाते होंगे, उसमें उठता नहीं, उठना नहीं पड़ता है। हमारा पेशेंट आता है 10 बजे, उसकी रिपोर्ट आती है 11 बजे, उसको कुछ करना पड़ता है 1 बजे, चालू ही रहता है इमरजेंसी, और वो भी कोई ऐसे एकदम सीरियस सीरियस, बहुत सीरियस वाले टूरिस्ट, कहां कहां से आए हुए, दिन भर चालू ही। हमारा जो टाइम है योग का, एक पेशेंट गया और दूसरा पेशेंट आना है, उसके बीच का जो टाइम है वो है मेरे चिंतन का टाइम। अभी एक बैठा और वो गया, अभी दूसरा आना है, वो है टाइम। आत्मिक स्थिति का अभ्यास वो है कि ये भी आत्मा है, वो भी आत्मा है, आत्मिक दृष्टि उसको देखते समय वो तपस्या का पीरियड है बेस्ट। अगर मैं सोचू अरे क्या है, मुझे याद है मैं जब दादी जानकी के साथ कहीं वो एडमिट थे मुंबई में, उनके साथ गया, तो मेरी जगह कोई दूसरा आया था, वो बोला बाप रे इधर तो इतना काम है, इतना काम है, मैं क्या करूं, हमको कभी ऐसा लगा ही नहीं है काम है, काम ये शब्द ही नहीं आया कभी हमारा, क्या बहुत भारी है, बहुत हेवी है, लोड है, लोड हमारे उधर लोड शब्द यूज करते हैं, बहुत लोड है इधर ना काम का तो वो हमारे ऊपर है, हम क्या कैसे कर रहे हैं उसको, ऐसा कोई भी नहीं। आपको हर एक को क्या लगता है ये दूसरा बहुत अच्छा है, इसका ड्यूटी, इसका ड्यूटी बहुत अच्छा है, हमारा तो देखो कैसा ड्यूटी है, इसका ड्यूटी सबसे बेस्ट है, फटाफट इतने 9 बजे से 5 बजे तक करो फ्री, हो गया काम, और हमको कभी भी बुलाते हैं, कभी भी जाना पड़ता है, उसका बेस्ट नहीं है, तुम्हारा ही बेस्ट है। ये चांस है, लॉटरी है तुमको, जो विपरीत परिस्थितियों में संपूर्ण बनना है, प्रतिकूल परिस्थितियों में, अनुकूल परिस्थितियों में संपूर्ण नहीं बना जाता है, सब कुछ अच्छा है तुमको दे दिया जाए, क्या चाहिए, अच्छा तुमको ये चाहिए, अमृत वेले भी तुमको ये, अमृत वेले कोई उठाएगा नहीं, कोई कुछ करेगा नहीं, मुरली में भी तुमको कुछ करेगा नहीं, उसके बाद भी तुमको 2 घंटा फ्री है चिंतन के लिए, ड्यूटी में खाली 2 घंटे आ जाओ बैठो, वो भी कुछ करना नहीं है, थोड़ा बहुत कर लो और जाओ, अभी 2 घंटा दोपहर में सो जाओ, फिर शाम को तुमको योग का टाइम है, ये सब ऐसी अगर दिनचर्या दी जाए ना तो वहां पे बुद्धि लग जाएगी, फिर मोबाइल और इंटरनेट में ग्रुप्स बनाने में, नए नए ग्रुप्स बनाना, ऐड करना, निकालना, ये करना, ये करना, ये करना, इसमें ही बस जो मिला है ना वही बेस्ट है, दूसरा दूसरे को जो ड्यूटी है ना वो कभी भी अच्छी नहीं, हमारी बेस्ट है। अच्छा कुछ ऐसी भी आत्माएं हैं कि जो पहले एक डिपार्टमेंट में गई, उन्होंने कहा ये अच्छा नहीं है डिपार्टमेंट, यहाँ के लोग ये भाई लोग अच्छे, चलो उसको दूसरा डिपार्टमेंट, ये सबसे घटना है, उसको फिर दादी ने दूसरे डिपार्टमेंट में भेजा, वो कहता है कि अरे ये इंचार्ज ठीक नहीं है, मेरे को दादी कुछ मैंने किया दादी के पास, फिर से ये यहाँ से चेंज करा, वहां से चेंज कराए, फिर वहां गया तीसरे डिपार्टमेंट में, यहाँ का टाइमिंग ही ठीक नहीं है, यहाँ तो मुरली अटेंड नहीं कर सकते, क्या मतलब है इधर आए किस लिए थे, वो तो मौलिक प्रश्न है, ये यहाँ आए थे किस लिए, ज्ञान योग करने के लिए, यहाँ तो ड्यूटी चालू होती है 6 बजे से 10 बजे तक, ये भी कोई ड्यूटी है, और फिर दोपहर में फिर, और फिर शाम को योग के टाइम पे फिर ड्यूटी है, मतलब हमारा योग ही नहीं हो रहा है, बहुत बड़ी है, फिर चेंज कर दी ड्यूटी, फिर दूसरे डिपार्टमेंट में, ऐसे करते 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 आज वो भाई घर पे है,
चेंज हो गया
अभी घर पे है बेटा, हाँ चेंज हो गया। इसके लिए ऐसा ही बहनों का भी है, एक सेंटर दूसरा सेंटर तीसरा सेंटर चौथा सेंटर पांचवा सेंटर, अभी कुछ समय पहले एक बहन हॉस्पिटल में आई थी, 3-4 सेंटर घूम के फिर नीचे से बोला भैया अभी इधर ट्राई करो, इधर ट्राई किया तो कुछ दिन इधर भी 2-3 डिपार्टमेंट घूमी, ये ठीक नहीं वो ठीक नहीं, अभी कहाँ है पता नहीं। इसके लिए जो मिला वो भगवान ने बहुत सोच के दिया है, जो ड्यूटी आवर्स दी है बहुत अच्छे आवर्स दी है, वही बेस्ट टाइम है, उसी में संपूर्ण बनना है, उसी में वही प्रतिकूल परिस्थिति में उन्हीं लोगों के बीच जो विरोध करते हैं, टांग खींचते हैं, कुछ ना कुछ बाधा डालते हैं, वहीं पे हम संपूर्ण बन सकते हैं। हमारे पास नीचे एक भाई है, वो कहता है जब वो सेंटर पे था, पहले सेंटर पे था कई साल, वो बहन जी वो हम खाली सूक्ष्म वतन तक ही जाते थे, ऊपर जा ही नहीं सकते थे, क्योंकि जैसे सूक्ष्म होता है वो बहन जाती थी सब्जी लेके आओ फिर पानी भर के ये करो वो करो, ऊपर कैसे जाए, योग का टाइम ही नहीं देते। पर वो बहुत ही अच्छा था, उसमें बिजी तो रहते थे, अभी टाइम ही टाइम है तो इतना व्यर्थ उत्पन्न हो गया कि बात मत पूछो। हर दिन नया नया खाने का जाओ बनाओ, घूमने जाओ इसके उसके साथ जाओ, टोली सुनहरी टोली, चार पांच लोग मिलके बैठो, किसने क्या क्या किया, कौन से डिपार्टमेंट में क्या चालू है, किसकी ट्रांसफर किधर से किधर हो गई है, पहले वो उधर था अभी शांतिवन से उधर चला गया, उधर क्या हुआ, अरे तुमको पता नहीं, कहाँ रहते हो तुम, बैठो बताता हूँ डिटेल। और फिर दूसरे दिन की अपॉइंटमेंट फिक्स, आगे और क्या क्या हुआ कल बात करेंगे, और किस किस के साथ क्या क्या हुआ, बैठे हैं कौन कहाँ योग में बैठता है, आज उधर बैठा, अच्छा वो बहन आज उधर बैठी, क्यों किसकी आज उधर क्यों बैठी वो बहन, इधर क्यों नहीं थी, रोज तो यहाँ बैठती है, फिर वहां क्या कर रही है आज, ये सब क्या है, उनको क्या करना है, कौन आ रहा है योग में, कौन नहीं आ रहा है, कौन मुरली सुन रहा है, कौन कौन मुरली में सो रहा है, सोने दो जिसको सोना है, तुमको बताने की जरूरत ही नहीं है, सोना है तो सोने दो, वो उसी के लिए आए हैं यहाँ, तुम किस लिए आए वो तुम देखो, वो आचार्य कौन अरविंद बाबा भी नाम देते हैं ना, अरविंद अरविंद गुरु, उनके आश्रम में भी एक बहुत अच्छा पुरुषार्थी था, तो वो आया उनको कहा कि ये देखो ना यहाँ आए हैं पर करते कुछ भी नहीं है, हर जगह संगठन है तो ये समस्या तो हर जगह की है, केवल ये ब्रह्मा कुमारी समस्या नहीं है, हर जगह ऐसा है, जहां भी संगठन है आध्यात्मिक कुछ कुछ है बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते, कोई कोई कुछ नहीं करते, वो कहते हैं वो ये देखो क्या कर रहे, पर चिंतन करते रहते, ऐसे करते रहते वैसे करते ना, तो ये सुनते बोलते वो उसी कार्य के लिए यहाँ आए थे, तुम किस लिए आए वो तुम देखो, वो भर्ती ब्रह्मा कुमारी से भर्ती उस कार्य के लिए हुए,
पार्टी पेपर बनने का
बस वो है, दूसरों यही उनकी विशेषता है, दूसरों के लिए पेपर बनना और दूसरों को शक्तिशाली बनाना, ये उनकी विशेषता है, उसको विशेषता के रूप में देखो, वो आसपास रहेंगे तो हम और शक्तिशाली लिंग लिंक कब नहीं रहती है, तब रहती है जैसे अब एक दूसरा उदाहरण देता हूँ, एक माता एडमिट हुई, एडमिट नहीं मतलब सेवाधारी पांडव भवन से आई, 104 बुखार कांप रही है, ऐसे ऐसे ऐसे, हमने कहा भर्ती हो जाओ, वो कहती है नहीं कैसे भर्ती हो सकती, बाबा की सेवा में आई बोझ चढ़ेगा और पैसे बिल्कुल नहीं है, 200 रुपए 400 रुपए लेके आई थी, 200 रुपए तो आने की टिकट कॉमन बुकी थी, 10-15 रुपए और है और जाने की टिकट है एक महीने के बाद 200 कॉमन बुकी थी, और कोई पैसे नहीं, हमने कहा सब फ्री कर देंगे भर्ती हो जाओ, फिर भी नहीं होंगी क्योंकि बाबा की सेवा में आए हैं, बहुत चढ़ेगा, कैसी भावना है उसकी देखो, कितना बुखार है 104 कांप रही है कि कुछ भी होने तो दवाई दे दो मैं ठीक हो जाऊंगी, फिर भी जबरदस्ती भर्ती कर दिया। दूसरा एक उसी दिन एक ग्रुप आया वीआईपी सो कॉल्ड वीआईपी जिसमें एक भाई है जो बड़ा थोड़ा बहुत वीआईपी, उसके साथ वाले 3-4 इसको भर्ती कर दो, क्या है बुखार जैसा लगता है 2-3 दिन से, तो है नहीं अभी पर लगता है मतलब, तो दवाई दे दो, नहीं नहीं भर्ती कर दो इसको, इसको भर्ती करना ही है बिल्कुल, चलो कर दो भर्ती। अच्छा भर्ती कर दिया डिलक्स रूम में वगैरह वगैरह भर्ती कर दिया, शाम को जब देखने गए माता को तो माता मुरली पड़ रही है, अभी 104 था अभी 101 बुखार है, अभी भी बुखार है पर क्या चालू है मुरली पड़ना चालू है, वो बुखार में ही कोई हीटर नहीं है, ठंडी के दिन जनवरी मतलब इस तरह का वो ये था, इतने ठंडी उसमें बिल्कुल भी वहां हीटर नहीं, सिस्टर को बोला सिस्टर इसको हीटर दो इसके पास रखो, तुमको कुछ चाहिए क्या, कुछ नहीं चाहिए कल छुट्टी कर देना बस। रिपोर्ट आए सब रिपोर्ट इतने अच्छे नहीं है, एबनॉर्मल रिपोर्ट है सर, रिपोर्ट में ये बड़ा हुआ ये बड़ा है, अभी सोनोग्राफी भी करना, नहीं नहीं वो सब बाद में, मैं तो अभी ठीक हूँ कल आप बस छुट्टी कर दो। फिर ऊपर देखने गए डिलक्स रूम, 4-5 लोग बैठे हुए हैं, टीवी चालू है, टीवी चालू है, हीटर लगा हुआ है, हीटर पहले से लगा हुआ है और बातें इधर उधर की चालू है, कटोरे सेप और ये सब फल विल है, गुलदस्ते है, और फिर डॉक्टर साहब ये हीटर ठीक से काम नहीं करते इसका देखो जरा, वो देखो आप, नहीं तो फिर बात करेंगे आगे। कहा दो ये है इधर से ही रहने वाले चार चालीस साल हो गए होंगे, तीस साल चालीस साल जो भी, और वो एक माता देखो जिसको बस एक ही ताक एक ही लगन है कब यहाँ से जाओ और अपनी रोटियां बनाओ, जिसके लिए आई थी मुझे वही करना है, ये कहां से बीच में बीमारी आ गई। उसको फिर जबरदस्ती सोनोग्राफी कराया, सब कुछ कराया, छुट्टी। दूसरे दिन इनको देखा तीन दिन रखा, बुखार एक बार भी नहीं आया। क्या करना है, छुट्टी करनी है क्या? नहीं देखो कुछ अहमदाबाद में अगर कोई जांच करनी है तो करा लो। तो चलो वो भी करा लो, सब करा के छुट्टी कर दिया। फिर भी जाके कहीं ना एक दिन जाके उधर से जाके और इतनी बड़ी फाइन बना के रही, सब नॉर्मल। आत्मा में कामना इतनी ज्यादा है और जो संग मिला है उसी तरह का है। अच्छा ये दो आत्माओं को अगर बाबा देखे तो किसको मदद करेगा? बहुत सूक्ष्म बात है जो मैंने कहा, ये बहुत सीरियस बात है।
बंदा बाबा
उसको ही मदद करेगा। कोई एक भाई था जिसको कोई फोड़े हो गए थे, ठीक नहीं हो रहा था, तो अपने इंचार्ज को कहा मुझे गाड़ी दो, बहुत कमजोरी है, जा भी नहीं सकता, दी नहीं। फिर गवर्नमेंट गाड़ी में बस बेड के ऊपर आया, आया जानसर रोड में आया, फिर हॉस्पिटल गया, वहां से भी बड़ी मुश्किल से पहुंचा, पहुंचा तो पता चला संडे है, सब बंद। फिर कोई होम्योपैथी डॉक्टर मिल गया, उसने ऐसी कोई दवाई दे दी और वो ठीक हो गया। ठीक होने का तो कोई चांस ही नहीं था, जो फोड़े इतने ज्यादा थे उसके लिए तो एडमिट करके एंटीबायोटिक सब देकर ही ठीक होना चाहिए था उसका, फिर भी वो ठीक हो गया। क्योंकि जब कोई हमारा साथी नहीं होता है तो उसकी याद बहुत ज्यादा रहती है। अब जब हम बीमार हैं और 10 लोग आसपास बैठे हुए हैं, क्या बाप को याद कर सकेंगे? 10-5 मिनट में आके कोई पूछता है कुछ चाहिए क्या, कुछ दू, कुछ ये बना, कुछ बना के लाऊं, चाटुकार। हृदय हमारा कैसा है, भावनाएं हमारी कैसी है, कितना वो विश्वास है उसके ऊपर। जैसे वो माता है, बाद में कभी दिखी नहीं, जो गुम हो गई तो गुम हो गई, बोले अभी नहीं आऊंगी कभी, पर भावना है भगवान के प्रति। कुछ कुछ ऐसे ऐसे माता है अनपढ़, कुछ नहीं आता है उनको, पढ़ना भी नहीं आता। हमारे हॉस्पिटल में एक भाई है चेतू भाई, वो तो एकदम अनपढ़ है, उसको पढ़ना भी नहीं आता, लिखना भी नहीं आता। बोले में जाता है, एक दो पॉइंट सुनता है, उसका काम है यहाँ की फाइल उधर लेना, उधर की फाइल उधर, वो एक ही काम है। पर जब भी ओपीडी में आएगा फाइल लेके एक मुद्दे का पॉइंट जरूर सुनाएगा। उसको उतनी समझ में आई है, भाषा भी इतनी अच्छे से नहीं आती, पर विश्वास वो फेथ, मतलब ऐसी ऐसी माताओं के तो इतने उदाहरण है कि आंखों से आंसू हो जाए। उसके सामने तथा कथित ब्राह्मण मधुबन निवासी कुछ भी नहीं, इतनी श्रेष्ठ भावना है। हाँ वो जब है यहाँ रहने वाले, वो क्या कहते हैं कि हम भी पहले ऐसा ही पुरस्कार कर देते, बहुत अच्छा ये तुम जो कर रहे हो ना, मुझे कई लोग कहते हैं बहुत बहुत बढ़िया, मैं भी ऐसा ही करता था, अब क्या हुआ अब क्या हुआ, हम भी ऐसे ऐसे ही उठते थे, ऐसे ही चर्चा करते थे ज्ञान का, ये ही सब ऐसा ही नशा हमको भी था, अब क्या हुआ, प्रश्न ये है कहाँ गुम हो गया नशा, कहाँ उड़ गया। अपने नशे को कभी कम नहीं होने
दिया, हमने बहुत कर
लिया, हमने बहुत कर लिया। अरे हमारा तो 2 उठ के जाते थे हम मधुबन पूरा, अभी रात में भालू दिखता था, कभी कभी रात रात भर भट्टिया करते थे, ये तो कुछ भी नहीं है अभी, ये कोई पुरुषार्थ। अरे क्या ग्रुप था, क्या वो जमाना था, पूरी अभ्यक्त वाणिया डेली पढ़ना, फिर उसके ऊपर क्लासेस, फिर पॉइंट, फिर उसके ऊपर टेस्ट लेते थे, रात रात भर जागते थे,
पूरी
मुरली, वाह क्या था। और अभी कुछ भी नहीं, अभी तो हार्डली कभी कभी दिखते हैं मुरली क्लास में। अमृत वेला भी आज है तो कल नहीं, बैठते हैं तो नींद, कब नींद लग आती है पता ही नहीं चलता है, ये हालत है। क्यों? जब जैसे ज्ञान और योग कम हो जाता है जीवन से, ये भटकाव चालू हो जाता है, अवज्ञा होने लगती है, भटकना चालू हो जाता है, योग में नींद आने लगती है। कुछ दिन कल की मुरली में था ना, ये यहाँ सामने किसको बिठाना चाहिए बाबा, उनको नींद ना करे, उबासी ना है, उसके लिए कहते ना कि ये तो यहाँ किसने लाया, सब बात है, इनको ज्ञान और योग का नशा ही नहीं है तो ये सारी बातें हमको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो सात रोज की मुरली पर फुल अटेंशन, एकांतवासी पर फुल अटेंशन, कोई कंप्लेंट नहीं करनी है, किसी के बारे में कोई कंप्लेंट नहीं करना, ये सबसे महत्वपूर्ण नियम है इस यज्ञ का। अगर किसी की कंप्लेंट की तो बदला लेंगे, बाहर वाले तो भूल जाते पर ब्राह्मण नहीं भूलते, नहीं भूलते, इसके लिए नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं, जो है जैसा है करने दो, जो कर रहे हैं करने दो, हमें किसी की कोई कंप्लेंट नहीं करनी। अगर बहुत ही ज्यादा भर जाता है अंदर तो बाबा को सुना दो, लिख दो, पर कंप्लेंट करके हमें कुछ मिलने वाला नहीं है, हम ही दुखी होंगे, हम ही भटक जाएंगे, उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, उनका तो अच्छे लड़ोल पुरुषार्थ चल रहा है, वो ज्यादा अच्छे लड़ोल है, जो पुरुषार्थ नहीं करते ना वो ज्यादा अच्छे लड़ोल है, क्योंकि उनको कोई वो कॉन्शियस जो है अंदर का वो खत्म हो चुका है, धीरे 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 हमें क्या करते 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 आदत से बन गई। पर जिनको बहुत ज्यादा अटेंशन है, थोड़ा सा भी किसको कुछ बोल भी दिया, अगर वो गलत है और बोल दिया तो हमको ज्यादा दुख होगा, उससे हमारा योग खत्म हो जाएगा, उसका हो या ना वो छोड़ो, हमको ही बुरा लगेगा इतना, क्योंकि स्वभाव हमारा उस तरह का है। इसके लिए ये जो बात कही है ना एकांतवासी वाली, इसको प्रैक्टिकल में लाना है, ये होमवर्क है इस हफ्ते का, जब भी टाइम मिले या आंखें बंद करके भी कर सकते हो या आंखें खोल कर भी, कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश करो, कुछ ना कुछ योग का अभ्यास करो, आत्मा निकल कर गई शिव बाबा के पास और आ गई, छोटे छोटे अभ्यास ले लो और वो दिन भर दिन भर बुद्धि ज्ञान के सागर में लहराते रहे, बस इसको रक्षक, ठीक है। Thank you.